ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, स्वीट गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आई आपके? गुड मॉर्निंग पीयूष भाई, गुड मॉर्निंग पीयूष भाई, उधर नहीं, इधर ऑडियंस कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। आज का सत्र बहुत ही सुंदर सत्र है, जिसका स्पष्टीकरण लेके आए हैं हमारे बीच में पीयूष भाई। पीयूष भाई का व्यक्तित्व इनके चेहरे से झलकता है, इनकी नैनों की रूहानियत से झलकता है। आप न्यू दिल्ली लोधी रोड से पधारे हैं, 27 वर्षों से ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं और 1500 से अधिक आपने आर्टिकल भी लिखे हैं और बहुत सारे कॉरपोरेट कंपनीज में आप रेगुलर फैकल्टी भी हैं। और मैं जो आपको बताना चाहूंगी, इनके जीवन की जो बहुत सुंदर धारणा मुझे अच्छी लगती है और मैंने 50% तक सीखी है और सीख रही हूँ, ये हर कार्य करने के पश्चात बोलते हैं थैंक्स गॉड। हम यहाँ गॉड को बाबा बोलते हैं, शिव बाबा। तो जो भी कोई कार्य होता है या किसी से भी मिलते हैं या कोई भी इनको अप्रिशिएट करता है तो ये क्या बोलते हैं? शुक्रिया बाबा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप भी बोलते हो? हम भी बोलते हैं, लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं। और इन्होंने अपनी इस नेचर को नेचुरल नेचर बना लिया है। और जब पल पल शुक्रिया करते हैं तो मालूम है आपको, शुक्रिया माना हमारे चेहरे पर स्माइलिंग और शिकवे माना हमारा चेहरा मुरझाइश में। तो मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है या मुरझाइश वाला? मुस्कुराता हुआ। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के लिए क्या करना पड़ेगा? हर पल शुक्रिया करना पड़ेगा। शुक्रिया करते हैं तो मुस्कुराते हैं, शिकवे करते हैं तो मुरझा जाते हैं। तो कभी मुरझाना नहीं, हम प्रभु की बगिया के फूल हैं। तो अपने विर्चुस के साथ, अपने गुणों के साथ हमें खिले रहना है। लेकिन बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी परेशानियां, इतनी जवाबदारियां, जिम्मेवारियां हैं, तो हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं? तो आज इन्हीं सब चीजों का समाधान करने के लिए कि हम अपनी जो भी परेशानियां हैं, जो भी पीड़ा है, उसको प्राप्ति में कैसे परिवर्तन करें, तो मैं आपके और पीयूष भाई के बीच में बाधक ना बनना चाहूंगी। इसलिए मैं पीयूष भाई से अनुरोध करूंगी कि आज के विषय को स्पष्ट करें। आदरणीय पीयूष भाई,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का इस आज के प्रातःकालीन सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी समय से पहुंच गए हैं। अब हमको ये भी पता है कि ये हमारा जो संगोष्ठी है, सेमिनार है, अपने समापन की ओर बढ़ रही है। शायद मैं समझता हूं ये इस सेमिनार का अंतिम सत्र है। इसके बाद तो समापन सत्र होना है और फिर आपको भ्रमण पर जाना है और फिर अपने अपने घर वापस जाना है। तो कहते हैं एंड अगर वेल है तो फिर ऑल इज वेल, इफ एंड इज वेल देन ऑल इज वेल। तो मैं चाहूंगा कि ये सत्र आप सबको यादगार हो जाए, आप सब कुछ लेकर के जाएं। ऐसे तो सारे ही सत्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि मैं तो आरंभ से ही यहां हूं, शुक्रवार से लेकर जो हमारा स्वागत सत्र हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी वक्ताओं ने बताई और बहुत सारे नोट्स मैंने भी लिए हैं और मैं उनको बार बार दोहराता भी रहता हूं। फिर हमारा शनिवार को प्रातःकाल जो उद्घाटन सत्र हुआ तो सारे ही वक्ता बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के गए। दादी रतन मोहिनी जी की बात मुझे बहुत अपील बार बार मेरे मन में आ रही है कि 14 वर्षों तक उन्होंने घोर तपस्या की। आप सोचिए, आज हमारे पास 14 दिन भी नहीं है, आज हमारे पास 14 घंटे भी नहीं है। अगर आपको भी कह दिया जाए कि 1 घंटे आपको इस हॉल से निकल के कहीं बाहर नहीं जाना है तो क्या हाल होगा हमारा, बताइए। आप सबके चेहरों पर तनाव आ जाएगा, सबके चेहरे विचलित हो जाएंगे। अब क्या होगा, आप सोचिए उन तपस्वी आत्माओं का। दादी जानकी जी के दर्शन से हम वंचित रह गए, वो शायद हम एड्रेस करने वाले थे लेकिन कोई कारण ऐसा बना। आप सोचिए उनके शरीर की आयु 100 वर्ष है, 100 साल। पिछले 80 वर्षों से वो तपस्या कर रही हैं। आप देखिए कितनी विशेष मूर्ति वो होंगी, कितना उनका विशेष आभा मंडल होगा, उनका कैसा प्रभाव मंडल रहा होगा। हम तो कोई बात, कोई पढ़ाई 1 साल 2 साल भी पढ़ते हैं तो हमें लगता है बहुत पढ़ाई पढ़ ली, अब क्या पढ़े। लेकिन दादी जी कहती हैं, मैं हर दिन जो हमारी मुरली है, अभी तो मैं समझता हूं आप मुरली शब्द को भी समझ गए होंगे, तो दादी जी कहती हैं मैं मुरली से रस लेती हूं। आप सोचिए। और इसके बाद भी जो आगे वाले सत्र हमारे हुए हैं, बहुत अच्छे, सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, तो इसलिए इन सब बातों को हम अपने साथ संजो करके ले जाएंगे। और इसका तरीका एक ही है कि आप इन बातों को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे सामने वाला सुने तो उसका भला, न सुने कोई बात नहीं, मेरा तो भला हो गया ना। अगर मुझे थोड़ा स्वार्थी भी बनना पड़े इस बात में, कई बार हम लोग शिकायत करते हैं ये अच्छी बातें कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन मैं कई बार अपने आप से विचार करता हूं कि हो सकता है मेरी कोई बात न सुने, मेरी बात कोई क्यों सुनेगा। वो कहता है मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान है, आपसे ज्यादा अनुभव है, हो सकता है कोई ब्रह्मा कुमारी की बात भी न सुने। कोई कहे हम तो साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, हम तो राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं, फलाने से जुड़े हुए हैं, लेकिन कदाचित ये नहीं हो सकता कि कोई परमात्मा की बात न सुने। तो मैं किसका रिप्रेजेंटेटिव बनके जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी बात किसी को सुनाएंगे तो कोई सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में भी कई कईयों की ऐसी भ्रांति हो सकती है, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान नहीं है, ये स्वयं परमात्मा निराकार शिव का ज्ञान है, जिसको सारी दुनिया की आत्माएं, मैं समझता हूं प्रातःकालीन सत्रों में आपने जरूर ये सुना होगा कि वो परमात्मा केवल भारतवासियों का नहीं है, वो कोई हिंदुओं का नहीं है, वो सबका मालिक एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो वो कौन सा बृहद नाता है जो हम सबको जोड़ रहा है, और वो नाता है हम सब आत्मा हैं, उस पिता परमात्मा की संतान हैं। तो इसलिए थोड़ा इसमें स्वार्थी बनना पड़े, क्योंकि जितने बार आप इन बातों को दोहराएंगे तो वो बातें आपके जीवन में पक्की हो जाएंगी। ठीक है, वैसे स्वार्थी बनना अच्छा नहीं है, लेकिन इस बात में स्वार्थी बनेंगे तो आपका कल्याण होगा। मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूं, स्वार्थ की बात चल रही है तो एक बार एक अमेरिकन और एक भारतीय दोनों जंगल में चले गए। तो जंगल में गए तो अचानक देखा सामने शेर आ गया, तो क्या करेंगे अब, बहन जी सामने बैठी है ना, क्या करें अभी। तो किसी ने जवाब दिया, अब हमें थोड़ा ना करना है, अब तो जो कुछ भी करना है शेर को ही करना है, हमारे सामने कोई चॉइस नहीं है। लेकिन भारत वाला जो व्यक्ति था वो बहुत समझदार, बहुत होशियार, उसने अपने बैग से अपने रनिंग शूज निकाले और वो पहनना शुरू कर दिया। तो अमेरिकन ने पीछे मुड़ के देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, आपको लगता है आप शेर से तेज दौड़ लेंगे। कहा, शेर से नहीं लेकिन आपसे तो तेज दौड़ लूंगा ना। ओके, तो हमें क्या करना है कि अगर ज्ञान ग्रहण करने में, ज्ञान बांटने में, ज्ञान दूसरों को देने में हमें कभी संकोच नहीं करना है, कल जो बाबा के महावाक्य हमारे चले, ऐसे तो हर वाणी ही अपने आप में विशेष होती है, लेकिन रविवार की वाणी बहुत विशेष होती है। तो बाबा ने उसमें बहुत अच्छी बात, बाबा माने परमात्मा निराकार, बाबा माने पिता, मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता वो परमात्मा है, उसको हम प्यार से बाबा कहते हैं। तो वो अनुभूति, वो सुख, वो संबंध हमें भासता है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, वो कल से ही मेरे दिमाग में बार बार घूम रही है कि एक होते हैं वर्णन करने वाले और दूसरे होते हैं अनुभव करने वाले। तो वर्णन करने वाले तो बहुत हैं, बहुत मंच पर आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल के चले गए, चेतन भगत को सुने, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे मैनेजमेंट गुरु आज दुनिया में हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वर्णन करना अलग है लेकिन अथॉरिटी से बोलना, रियलाइजेशन, मैं उस अवस्था में स्थित होकर के बोल रहा हूं तो सामने वाले को उसकी अनुभूति न हो, उसकी प्राप्ति न हो, असंभव, हो ही नहीं सकता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करिए। बच्चों को भी कई बारी, या तो हम कार्यालय में जहां कार्य करते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम दिल से बोल रहे हैं, दिल की गहराइयों से बोल रहे हैं, उस बात को अनुभव करके बोल रहे हैं? तो वर्णन करना और अनुभव करना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो हम यहां केवल, अब सुनने की बात तो हो गई, अब हमने सुनने के बाद समझ भी लिया। दूसरा स्टेप क्या है? पहले सुना, फिर समझ लिया, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब मुझे उसको धारण करना है। क्योंकि ज्ञान तो आपने बहुत सुना है, अब किसी टीवी चैनल को खोल लें, कोई गलत बात तो बोलता ही नहीं है, सब लोग अच्छी बातें बोल रहे हैं। आज तो क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन बम्बार्टमेंट, एक्सप्लोजन, इतनी सारी सूचना हमारे पास है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी में आके हमने एक नई चीज सीखी, वो है विस्टम। विस्टम, मुझे पता है क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध आ जाता है। तो इन्फॉर्मेशन तो है, सूचना तो है, लेकिन क्रोध को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है। और वो शक्ति मुझे कहां से मिलेगी? शक्ति कहां से मिलेगी? शक्ति का स्रोत कौन है? वो परमात्मा है। इसलिए स्वाध्याय, जितने भी हमारे ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्वाध्याय किया है। तो अगर हम भी इस पथ पर आगे जाना चाहते हैं तो हमें स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। अब आप कहेंगे भाई साहब ये तो आप कोई खास बात नहीं बता रहे हैं, हम तो जिंदगी भर स्वयं का अध्ययन करते रहे। नहीं, वो आपने स्वयं का अध्ययन नहीं किया है, वो तो शरीर का अध्ययन किया है, और शरीर तो अलग है, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, इसलिए मैं कहता हूं मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, तो फिर हाथ अलग है, शरीर अलग है, लेकिन मैं तो शरीर नहीं हूं ना। अपने बारे में जानना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज पीड़ा क्यों है? क्योंकि मैं देह को देख रहा हूं। आज का विषय हमारा ही ना, टर्निंग पेन इंटू गेन, सॉरी, पेन को गेन में कैसे बदली करें। तो पेन का कारण क्या है? क्योंकि मैं अपने आप को देह देख रहा हूं। फिर देह में तो बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं, बहुत सारे बैरियर्स भी हैं, और देह के आधार पर तो कितनी सारी यहां पर भिन्नताएं की जा सकती हैं। आप कौन सी स्टेट से आए हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। लेकिन अगर इन भिन्नताओं को कोई चीज एक करती है तो वो कौन सी है? वो चीज कौन सी है? सब आत्मा है, सब आत्मा है, एक पिता की संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो वो कौन सा नाता है जो हम सबको एक कर रहा है? और वो नाता है, हम सब आत्माएं हैं। तो पीड़ा क्यों आई मेरे अंदर? क्योंकि मैंने देह को देख लिया, लेकिन परमात्मा ने हमें बताया कि देह माध्यम है, लेकिन आप देह नहीं है, आप इस देह से परे एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। ये अभ्यास हमें बहुत बारी पक्का करना है, और जितना ये नेचुरल अभ्यास आपके लिए हो जाएगा तो हर चीज आपके लिए गेन हो जाएगी, हर चीज आपको प्राप्ति कराएगी, हर व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा। अभी मुश्किल क्या है, इस व्यक्ति को मैंने देखा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को मैंने देखा इसको देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। व्हाई? क्यों? क्योंकि मैंने उसकी दैहिकता को देख लिया। इसलिए पुराने जमाने में हम कहावत सुनते थे, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। पाप को घृणा करिए लेकिन पापी को नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, ये इंसान ही खराब है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की शिक्षाएं हैं, इस दुनिया में कोई भी इंसान खराब नहीं है। अगर मैं उसके खराबियों को देख रहा हूं तो ये मेरी सबसे बड़ी खराबी है। इसलिए आज से मुझे क्या करना है, मुझे हरेक की अच्छाइयों को देखना है, हरेक की अच्छाइयों को। तो चूंकि बात पेन की चल रही है, बात गेन करने की चल रही है, तो मैं कुछ मंथन चिंतन कर रहा था, मुझे कुछ बातें ध्यान पर आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बाहर से देखने में वो घटना बहुत लगता है हमें बहुत बुरी है, बहुत नुकसानकारी हो सकती है, लेकिन जब उसका एंड रिजल्ट आप देखते हैं तो जीवन में कोई भी घटना, हमारे जीवन में घटित होने वाली कोई भी घटना हमारे लिए अकल्याणकारी नहीं हो सकती है। कई सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, तो मैं वो एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूंगा। मैं जिस सेंटर पर रहता हूं लोधी रोड में दिल्ली में, तो अभी तो वो अपना घर है, थोड़े समय पहले वो हमने एक मकान किराए पर लिया, सत्य घटना है। तो मकान किराए पर लिया और मकान मालिक के साथ हमने 5 वर्ष की कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन किया कि 5 वर्ष तक हम यहां रहेंगे, ये टर्म्स कंडीशंस हैं, सब कुछ है, सब ठीक हो गया। लेकिन थोड़े समय के बाद जो मकान मालिक थे उनका दिमाग किसी ने भर दिया कि ब्रह्मा कुमारी वाले आपके घर में आ गए और अब इनको निकालना बहुत मुश्किल है, समझो आपका मकान गया। तो अगर कोई के मन में ये बात आए मेरा मकान ही चला गया, तो नेचुरली उस व्यक्ति को बहुत बहुत परेशानी होती है। वो मकान मालिक भी बहुत परेशान हो गए, उन्होंने सोचा क्या करूं, तो उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। जो भाई बहन वहां आने वाले हैं उनको भी उल्टा सीधा बोलना, हमें भी उल्टा सीधा बोलना, कई बार रात को भी आना, दरवाजा खटखट करना, ऐसे करना। उनका पर्पज ये था कि कैसे भी ये मकान खाली करके चले जाएं। अब हम तो निश्चिंत थे, हमने तो सोचा था कि 5 साल के लिए मकान किराए पर मिला हुआ है तो आराम से सेवा करेंगे। लेकिन ये जब घटना बीच में आई तो हमें बहुत आश्चर्य लगा कि हमारा कोई अपना काम नहीं है, ये तो परमात्मा का काम है, और हम कोई कुछ फीस नहीं लेते, कोई कुछ चार्जेस नहीं लेते, लोगों को अच्छी बातें सिखाते हैं, लोग उन बातों को सुनने के लिए भी राजी नहीं है। तो कई बारी हमारे मन में ऐसे ऐसे संकल्प आते। तो वहां जो भाई बहन हैं आने वाले, हमने उनकी मीटिंग बुलाई, क्या किया जाए। तो सब भाई बहनों की मीटिंग से ये बात निकली कि क्यों ना हम कोई नया मकान देखें। ठीक है, नया मकान देखें, किराए पर देखा, 2-3-4 मकान देखे, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। और उसकी जो क्रियाकलाप थे वो तो दिनों दिन बढ़ ही रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति हमें जल्दी से जल्दी अपने मकान से निकालना चाहता था। तो फिर हमने भाई बहनों की मीटिंग बुलाई, अब हम क्या करें, मकान भी कोई किराए में हमारे हिसाब से मिलता ही नहीं है, क्या किया जाए। तो फिर एक सबकी राय हुई कि क्यों ना हम एक अपना मकान ही परचेज कर लें, अच्छी बात है। हालांकि हमारे पास इतना धन नहीं था, मकान खरीदना आपको पता ही है इतना सहज नहीं है, लेकिन सब भाई बहनों ने कहा कोई बात नहीं, हम मिलकर करेंगे। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की यह व्यवस्था है, जब भी कोई कार्य होता है तो सब मिलकर करते हैं, बूंद बूंद से तालाब, ऐसी कहावत है। तो फिर हमने मकान देखना शुरू किया, तो मकान मालिक को भी पता लग गया, तो वो व्यक्ति हमारे पास एक दिन आए और कहने लगे मैं आपके लिए कोई मकान देखूं, क्योंकि उनका प्रॉपर्टी का कारोबार भी था। हमने कहा आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। तो थोड़े समय के बाद क्या हुआ, उस कॉलोनी में, उस एरिया में जो सबसे बड़ा मकान है और हमारी सेवाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, वो जो मकान मालिक थे हमारे, उन्होंने ही हमें बताया कि ये मकान है, आप इसको खरीद सकते हैं। बातचीत आगे बढ़ी। कहने का भाव क्या है कि थोड़े समय के बाद हमने वो मकान खरीद लिया। और आज मैं कई बार ही अपने आप से बात करता हूं कि अगर वो व्यक्ति मकान मालिक हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं डालता, हमें तंग नहीं करता, हमें परेशान नहीं करता, तो शायद आज भी हम किराए के मकान में ही बैठे होते। तो मेरा कहने का भाव क्या है कि चाहे कोई भी घटना बाहर से देखने में बहुत कष्ट, बहुत परेशानी, बहुत मुश्किल वाली होती है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट ऑलवेज अच्छा होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो हर घटना आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर मुझे पेन को गेन में बदलना है तो मुझे अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। आज हमारा दृष्टिकोण कैसा हो गया है बताइए, आज हमारा दृष्टिकोण कैसा हो गया है बताइए, कैसा हो गया है? आज हमारा दृष्टिकोण बहुत नकारात्मक हो गया है। अपने साथ ही सवेरे सवेरे उठते ही मैं काम कर नहीं सकता, मैं वहां जा नहीं सकता, ये प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर नहीं सकता। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आपने कोई भी बात नकारात्मक बोली, एक बारी भी बोली, तो आपकी सारी शक्तियां क्षीण हो गई। आपकी शक्तियां क्या हो गई? क्षीण हो गई, ड्रेन आउट हो गई, सारी पावर, सारी एनर्जी, सारी स्ट्रेंथ। तो अब आप सोचिए कौन आपके लिए काम करेगा, आप तो अंदर से वैसे ही खाली हो गए। इसलिए कभी भी मुझे ना शब्द तो बोलना ही नहीं है। यस आई कैन डू इट। तो आप देखेंगे अगर कार्य करने की क्षमता भी आपके अंदर नहीं होगी तो परमात्मा वो क्षमता आपके अंदर भर देंगे। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इसलिए दुनिया में कहते हैं कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। तो हमारा इरादा कैसा हो, हमारा इरादा कैसा हो बताइए, बोलते नहीं है, पक्का। हमारा इरादा पक्का भी हो और हमारा इरादा नेक भी हो। नेक होना भी बहुत जरूरी है। हमें यह ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया है, दृढ़ता से सफलता। अगर आपने दृढ़ संकल्प कर लिया तो फिर असफलता हो नहीं सकती है। आप नोट कर लीजिए, आप करके देखिए। तो कोई भी घटना आपके जीवन में घटित होती है, आप दृढ़ता से जमे रहिए, पीछे हटने का प्रयत्न न करिए। आप देखेंगे थोड़े समय के बाद जैसे ही आपका दृष्टिकोण बदलता है तो फिर कहते हैं नजरें बदली तो नजारे बदले, नजारे बदल जाते हैं, सब चीजें आपके फेवर में आने लगती हैं। कई बारी मैं एक छोटी सी बात इसके बारे में आपको सुनाऊं, आपने शायद पहले भी सुनी होगी लेकिन फिर भी उसको बार बार सुनना अच्छा लगता है। कहते हैं एक बार एक जंगल में आग लग गई। ओके, और आग लग गई तो देखा एक छोटी चिड़िया थोड़ा पानी अपनी चोंच में भर के लाए और वहां जहां आग लगी थी वहां गिरा दे। तो वहां से हाथियों का एक झुंड गुजर रहा था, तो वह हाथी सभी बहुत आश्चर्य करने लगे और कहने लगे चिड़िया रानी आप क्या कर रही हो? तो चिड़िया ने कहा आप देखते नहीं जंगल में आग लगी है और मैं उस आग को बुझाने का कार्य कर रही हूं। तो सभी हाथी बहुत तेजी से हंसने लगे, उसकी मजाक उड़ाने लगे, कहते देखो ये चिड़िया जंगल में लगी आग को बुझाने चली है। तो चिड़िया ने उत्तर दिया कि सुनो मुझे ये पता नहीं है कि मेरे इस प्रयत्न से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मुझे ये पता नहीं है कि मेरे इस छोटे से प्रयत्न से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि अगर कभी इतिहास लिखा गया तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं लेकिन आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो जैसे ही ये चिड़िया के बात सुनी हाथियों को बड़ा जोश आ गया और उन्होंने फटाफट अपनी सूंड में पानी भर के लाए गिराया, पानी भर के लाए गिराया और देखते ही देखते क्या हुआ, जंगल की आग सारी बुझ गई। अब आप बताइए शर्मा जी आग किसने बुझाई? नहीं, आग तो चिड़िया ने नहीं बुझाई, आग तो हाथियों ने ही बुझाई, लेकिन उन हाथियों की प्रेरणा का स्रोत कौन बन गई? वो छोटी चिड़िया बन गई। इसलिए मैं कभी किसी के उमंग उत्साह को कम करने का प्रयत्न न करूं। आप ये काम कर ही नहीं सकते हो, आप वहां जा ही नहीं सकते हो। नहीं, यस यू कैन डू इट। सदैव हमें आज घर में मुश्किल क्या है, बड़ा बच्चा देखो पढ़ने में इतना होशियार है, ये छोटा बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है। अब छोटा बच्चा बार बार जब ये बात सुनता है तो उसको अपने मन में आता है, जब मैं पढ़ता ही नहीं हूं तो फिर मैं क्यों पढ़ूं। तो वो बच्चा क्या करता है, जो थोड़े बहुत गुण जो विशेषताएं उसके अंदर पहले से थी वो क्या हुआ, वो भी उसकी विशेषताएं सारी खत्म हो गई। तो आपने बच्चे का भला किया या बुरा किया, बताइए आपने क्या किया बच्चे का, बताइए। इसलिए मुझे वो बच्चा भी पढ़ता है, आप भी बहुत होशियार हो, आप थोड़ी और मेहनत करोगे तो और होशियार बन जाओगे, बस बन गई बात है। एक बारी हंसी की बात है, एक पिताजी अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे तो पिताजी ने पूछा, बताओ बच्चे हाथी के पैर कितने होते हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया 6। ओके, तो पिताजी बहुत खुश हो गए, तालियां बजाने लगे। आप ताली नहीं बजाते हैं यहां, वहां बहुत तालियां बजाई पिताजी ने, सब लोगों ने तालियां बजाई। तो वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने देखा और उसने भाई साहब से पूछा, उस व्यक्ति से पूछा, भाई साहब बच्चा गलत जवाब दे रहा है और आप बच्चे का तालियां बजा रहे हैं, आप कह रहे हैं बच्चे आपने बहुत अच्छा किया। तो पिताजी ने कहा, भाई साहब आप एक मिनट बैठिए, आप इस बच्चे का इतिहास नहीं जानते हैं, मैं आपको इसका इतिहास सुनाता हूं, सुनाइए। तो पिताजी ने कहा, यह प्रश्न मैंने इस बच्चे से कल भी पूछा था और इस बच्चे ने उत्तर दिया था, हाथी के 8 पैर होते हैं। ओके ओके, तो कहने का भाव क्या है, आप सकारात्मक चिंतन करेंगे तो हर घटना आपके लिए कल्याणकारी है। और जिस परसेंटेज के पीछे आज हम पड़े हैं, दैट इज नॉट एवरीथिंग। आज दुख क्यों होता है माता पिता को, मेरे बाजू वाले शर्मा जी के बेटे के 95% आ गए और हमारा बेटा 85% लाया, हमारी तो नाक ही कट गई, डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए, कईयों को हार्ट अटैक भी हो जाता है। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे कि क्या सचमुच हमारी नाक कटती है, ये सचमुच दर्द वाली घटना है, आप बताइए, बोलिए, ये दर्द वाली घटना है, दुख वाली घटना है? नहीं, सारे बच्चे तो 95% नहीं ला सकते हैं। और देखा यह गया है, अनुभव यह कहता है कि जो बच्चा 95% मार्क्स लाता है वो जरूरी नहीं है कि जिंदगी की गाड़ी में भी उतना ही सक्सेसफुल होगा। आप बिल गेट्स को जानते हैं, कौन कौन बिल गेट्स को जानते हैं, जरा हाथ उठाएं। अच्छा, सभी जानते हैं, वो आपकी जीके लगता है बहुत अच्छी है। ओके, बिल गेट्स की आप बायोग्राफी पढ़िए, ही इज मैट्रिक ड्रॉप आउट, आप पढ़ लीजिए, एंड टुडे ही इज रिचेस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ओके, तो आप किसको सफलता कहते हैं, बच्चा लाए अच्छे मार्क्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बच्चा अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो भी अच्छी बात है। सचिन तेंदुलकर को सभी जानते हैं, हाथ उठाएं जो जानते हैं सचिन तेंदुलकर। अच्छा, उनको भी सभी जानते हैं, आपकी जीके बहुत अच्छी है। ओके, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी आप पढ़ें, वो 80s में मैट्रिक में इंग्लिश के पेपर में फेल हो गए। ओके, 10वीं क्लास में 80s में वो इंग्लिश के पेपर में फेल हो गए और 2012 में जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है उसका पहला लेसन सचिन तेंदुलकर के ऊपर ही है। ओके, तो कहने का अभिप्राय क्या है कि बाहर से भले हमें देखने में लगता है कि हमारा बच्चा थोड़ा कमजोर है, हमारे बच्चे ने हमारी थोड़ी नाक नीची करा दी, लेकिन जरूरी नहीं है। और आज बच्चों को शिक्षा से ज्यादा दीक्षा देने की जरूरत है, आज बच्चों को शिक्षा से ज्यादा संस्कार देने की जरूरत है। आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, चलो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले भी ली। मैं पढ़ रहा था दिल्ली में एम्स में, एक बच्चा बहुत अच्छे परिवार का, उसने MBBS किया, MD किया, उसने अपनी फिर पूरी पढ़ाई करके उसको वहां जॉब मिल गया। ही वॉज यंग, वेरी गुड फैमिली, एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन सो स्मूथ। लेकिन एक दिन अखबार में खबर आई कि वो एक फीमेल पेशेंट को ऑपरेशन करने ले जा रहा था और उसने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया, उस डॉक्टर को पकड़ लिया गया। आप सोचिए, तो बच्चे की शिक्षा में कहां कमी रह गई, आप बताइए अभी मुझे। बहुत अच्छा परिवार, बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी, वो संस्थान भी बहुत अच्छा जहां वो जॉब कर रहा है, फिर कौन सी कमी रह गई बताइए। उस बच्चे को शिक्षा तो मिली लेकिन उसको संस्कार नहीं मिले। तो सचमुच अगर हमें पेन को गेन में बदली करना है तो आज हम अपने संस्कारों को भी, हम कहते हैं मेरा क्रोध करने का संस्कार है, स्रॉन्ग क्रोध करने का संस्कार तो मेरा हो ही नहीं सकता है। कोई भी आत्मा को हम क्रोधी तो आत्मा तो कहते नहीं है। आत्मा का संस्कार है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि माफ करना, क्रोध करना मेरा संस्कार है, माने मैं बार बार कहकर उस बात को पक्का कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो मेरा संस्कार नहीं है, वो तो किसी दूसरे का संस्कार है। इसलिए आज तक भी कोई भी व्यक्ति क्रोध करके खुश नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति आप देख लीजिए, आप इतिहास उठाइए, गुस्से से कोई बात नहीं बनी है, गुस्से में तो बनी हुई बातें बिगड़ गई। आपका जिंदगी भर का करियर एक सेकंड का क्रोध समाप्त कर सकता है, और एक सेकंड की शांति आपके बिगड़े हुए करियर को बना सकती है। कितनी सारी घटनाएं, मैं आपको अपने जीवन की घटना सुनाऊं। अभी तो मैं नौकरी नहीं करता हूं, मैं नौकरी करता था तो मैं कंप्यूटर में, चूंकि मैंने पढ़ाई सारी की तो आई यूज टू वर्क ऑन कंप्यूटर, तो एक बारी क्या हुआ कि कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई जिसमें मेरा भी हाथ था, पूरी वो चेन होती है वहां नीचे से भी, फिर मेरे ऊपर भी गलती हुई और अल्टीमेटली वो बॉस के पास पहुंची और वहां से भी उन्होंने उसको साइन कर दिया। तो फिर बाद में बॉस को पता लगा कि ये तो बड़ी भारी गलती हो गई, और किसी ने बताया, मेरा नाम उनको बता दिया कि पीयूष ने ये गलती की है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो बॉस ने मुझे बुलाया और इतना बुरा, इतनी सारी गंदी बातें, मैं आप उनको शब्दों को सुना भी नहीं सकता हूं क्योंकि उनको बहुत अंदर से गुस्सा था। लेकिन चूंकि मैं मेडिटेशन करता था और मुझे अंदर से ये भी थोड़ा पता था कि कुछ गलती हुई है, इसलिए मुझे बुलाया है। मैं अपने आप को तैयार करके गया था कि मुझे एक भी शब्द बोलना नहीं है, मुझे केवल शांत रहना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक वो बहुत बोलते रहे, फिर उन्होंने कहा बाहर जाओ। मैं बाहर आ गया, एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन बीता, बॉस को रियलाइज हुआ, उनको पता लगा अपने सोर्सेस से कि ये अकेला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं था, दिस वाज चेन, यू नो, सारे लोग रिस्पॉन्सिबल थे। तो 3-4 दिन, 5 दिन के बाद उन्होंने एक बारी मुझे वो अपने कमरे में बुलाया और कहा, पीयूष मैंने आपको इतना उस दिन बोला, इतना गुस्सा भी किया, उल्टा सीधा भी बोला, लेकिन आप कुछ बोले नहीं। अगर आप एक भी शब्द बोलते तो उस दिन मुझे आपको नौकरी से ही निकालना था। तो मैं परमात्मा का थैंक्स कर रहा था कि वो सामने वाला क्रोध में है, वो कमजोर है, वो गिरा हुआ है, उस समय वो अपने वश में नहीं है। लेकिन मैंने भी अगर सामने वाले के सामने क्रोध किया तो उसका परिणाम क्या होगा बताइए, व्हाट विल बी द रिजल्ट। क्रोध से तो कभी क्रोध को आप शांत कर ही नहीं सकते हैं, वो दुख में है। हम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में कहते हैं हमें दुख देना भी नहीं है और दुख, लेकिन हम बहुत बारी दुख ले लेते हैं। बॉस ने मुझे यह कह दिया, अब सारे दिन मैं परेशान हूं। तो हमने यहां एक बहुत अच्छी बात सीखी कि हमें दुख लेना भी नहीं है, क्योंकि बॉस जो कह रहा है, पड़ोसी जो कह रहा है, मेरे नेबर्स जो कह रहे हैं, दैट इज इमेटेरियल। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारा जो मेडिटेशन है वो क्या है, मैं अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहा हूं। एनवायरमेंट खराब है, एनवायरमेंट नेगेटिव है, एनवायरमेंट मेरे फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने लेवल को ऊंचा कर रहा हूं, बिकॉज वही चीज मेरे हाथ में है और कोई चीज मेरे हाथ में नहीं है। और जैसे जैसे आप अपने लेवल को ऊंचा करते हैं तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम नीचे रह जाती है, प्रॉब्लम छोटी हो जाती है, आप बड़े हो जाते हैं और वो जो दुख है, जो पीड़ा है, वो प्राप्तियों में बदल जाती है। इसलिए हम आज से ख्याल करेंगे कि लोग कहते हैं, लोगों का काम कहना है। कहते हैं मारने वाले के कोई हाथ पकड़ ले, अब कहने वाले का तो मुंह नहीं पकड़ सकते आप, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कौन सी प्राप्ति करनी है। बहुत बारी हम अर्जुन का, द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल देते हैं, सारे अपने डिसाइपल से पूछा तुम क्या देख रहे हो, तो किसी ने कोई उत्तर दिया, यू नो दैट स्टोरी। लेकिन अल्टीमेटली जब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया, व्हाट डिड ही से, बताइए। बस मैं अपने लक्ष्य को देख रहा हूं। तो हमारे भी जीवन में उद्देश्य क्या होना चाहिए, आज हमें दर्द क्यों मिल रहा है, किसी ने कुछ कह दिया और कहा भी नहीं, हम उससे एक स्टेप और आगे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, बस मैंने सोच लिया आप माने न माने ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं और मैं टेंशन में चला गया। देखिए अनुमान, इसलिए हमने यहां ये भी सीखा कि अपने अनुमान को चुनौती दीजिए, चैलेंज योर अजम्पशंस। चलो वो मेरे बारे में बात कर भी रहे हैं तो लेट देम टॉक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, आई हैव टू प्रूव इट अदर वे राउंड। ओके ठीक है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, ध्यान से कहानी को सुनना क्योंकि कहानी का टाइटल है चैलेंज योर अजम्पशंस। ओके फिर बाद में आपको मेरी कहानी का जवाब देना है। सभी ध्यान से सुन रहे हैं, ओके रेज योर हैंड्स प्लीज, सभी ध्यान से सुन रहे हैं, कोई सोने का प्रयत्न न करेंगे। ओके कहानी शुरू होती है, राम सिंह इज अ कैरेक्टर। राम सिंह क्या है, राम सिंह एक कैरेक्टर है एंड ही इज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। राम सिंह एक कैरेक्टर है, वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, घर के सारे दरवाजे सारी खिड़कियां बंद है। ओके सभी ध्यान से सुन रहे हैं, ओके बाय चांस एक रोशनदान खुला रह गया। रात को ठीक 12 बजे एक चोर घर में अंदर आया और घर का सारा सामान लेके चंपत हो गया, लेकिन राम सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की। स्टोरी इज ओवर। आप समझे, सुनी ध्यान से सुनी, किस किस ने ये कहानी पहले सुन रखी है, किसी ने नहीं सुनी, अच्छा आपने सुनी तो आप जवाब नहीं देना। जिन्होंने भी ये कहानी सुनी है प्लीज उनको आंसर नहीं देना है। कहानी का टाइटल क्या है, कहानी का टाइटल क्या है, चैलेंज योर अजम्पशंस, आपको अपने अनुमान को चुनौती देनी है। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, राम सिंह कौन है, उस राम सिंह, राम सिंह कौन है, एक एक करके बोलेंगे। कहते हैं हमारा मन, और कौन है राम सिंह, बताइए हुस राम सिंह, बताइए, सोचिए, प्रश्न का उत्तर इतना सहज नहीं है, डोंट बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाएंगे देन यू कैन नेवर सॉल्व ए प्रॉब्लम। कैरेक्टर है वो तो मुझे भी पता है, आई नो दैट जी। चादर है, ओके ओके, और बताइए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज इसके बारे में हो सकती है, कोई और बताए, पीछे से बताएं, राम सिंह कौन है, ओ राम सिंह आत्मा है, आत्मा का पाठ सबको बहुत पक्का हो गया है। हां जी, सोच है राम सिंह, वंडरफुल, वेरी गुड। एक मिनट, ब्लू शर्ट में जो भाई साहब है, आपका नाम, वेस्ट थॉट्स है, वेरी गुड, इसका अर्थ है आपको पाठ पक्का हो गया है यहां का। इमेजिनेशन है, वेरी गुड, और बताइए, हुज राम सिंह, हमारा मन, और मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, अभी राइट आंसर नहीं आया है। हां जी ओके, सोच और बताइए, क्योंकि मुझे बताया गया साइंटिस्ट इंजीनियर्स इस सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब दे सकते हैं, मुझे बताया गया है जी, अनुमान, कल्पना। मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, 10, 9, 8, 7, हां जी जी, बॉडी, ओके 7654. Okay. 4321. Okay. Ram Singh, 6 महीने का छोटा बच्चा है. Okay. मैंने राम सिंह नाम बोला सो दैट आई कैन चेंज योर थिंकिंग डायरेक्शन. कोई बड़ा आदमी, कोई लंबा चौड़ा आदमी, कोई मूछों वाला आदमी. सी तो मेरा कहने का भाव क्या है कि आपको अपने अनुमान को चुनौती देनी है. आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं. ओके? लेकिन कहते हैं एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. ओके? तो हम पेन को गेन में कैसे बदल सकते हैं? व्हेन वी थिंक इन अ डिफरेंट वे. इसलिए कहने में आता है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स. विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली. काम करने का अंदाज उनका निराला होता है. ओके? और अगली बात है, ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई है वास्तविकता ये है कि ये ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज. ये आपके लिए कोई न कोई कल्याण लेकर के आई है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आई है. आप देखिए, आप जिंदगी में कोई इम्तिहान न दें फिर क्या होगा? आपका प्रमोशन हो सकता है? बताइए. आप जिंदगी में कोई परीक्षा न दें और आप चाहे मेरी प्रमोशंस होती रहे, इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, बताइए. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. हमारी दादी जी कई बार कहती हैं, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल को चेंज कर देंगे लेकिन आप एग्जाम देने से नहीं बच सकते हैं. आज जितने भी डिवोर्स हो रहे हैं, कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं, पीयूष भाई मैं भी पिछले हफ्ते ही किसी बहुत बड़ी कंपनी में सेमिनार कराने गया, सारे दिन की सेमिनार. तो मैं गया यंगस्टर्स तो उन्होंने पूछा पीयूष भाई किस लिए आए हो? मैंने कहा मैं आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें वो पढ़ाने के लिए आया हूं. तो सारे खड़े हो गए. उन्होंने कहा हमें तो स्ट्रेस है ही नहीं, हमारे बॉस का इसको लूज है, आप उसको टाइट कर दो, हमें तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, वी आर ऑल राइट. आई सेड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी. तो आई वॉज टीचिंग देम थ्रू आउट द डे. यू मे नॉट बिलीव, जब शाम को मैं चेयरमैन के पास गया तो चेयरमैन साहब कहने लगे पीयूष भाई इन लड़कों ने मुझे तंग कर रखा है, इन सबका स्क्रू अगर आप टाइट कर दें तो माई कंपनी कैन डू वंडर्स. अब आप मुझे बताइए मुझे किसको ठीक करना चाहिए, किसको ठीक करें? बॉस खराब है, वो सोचता है मेरे साथी खराब हैं, सारी जिंदगी इसमें निकल जाती है. इसलिए ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हमने क्या सीखा? आई एम ओके, यू आर ओके, नो पेन. मैं भी ठीक हूं, आप भी ठीक हैं, लेट्स डू इट टुगेदर. एक महात्मा जी के दो शिष्य सामने बैठे थे. एक शिष्य ने कोई बात कही, महात्मा जी ने उसको ध्यान से सुना एंड ही सेड यू आर ओके, यू आर राइट. फिर उसके कोई विपरीत दूसरे शिष्य ने कोई बात कही और महात्मा जी ने उसको भी बहुत ध्यान से सुना, उसको भी कहा यू आर ऑल्सो राइट. अब एक तीसरा शिष्य वहां खड़ा हुआ सुन रहा था और उसने बहुत उसको आश्चर्य लगा. उसने महात्मा जी से पूछा महात्मा जी ये कैसे हो सकता है? उसने वो बात कही, आपने उसको भी राइट कह दिया. फिर उसने दूसरी बात कही उसके विपरीत, आपने उसको भी राइट कह दिया. तो महात्मा जी थोड़ी देर शांत होने के बाद बोले यू आर ऑल्सो राइट. ओके? दिस इज वॉट आर्ट ऑफ लिविंग इज. आप अगर बच्चे को कहेंगे बच्चे आप बहुत खराब हो, वो कल से आपके पास ही नहीं आने वाला भी. अगर आपने कलीग्स को बोल दिया आप काम नहीं करते हो, अब वो काम करेंगे ही नहीं. इसलिए हमारे ब्रह्मा बाबा, कल आपने उनके बारे में सुना, एम्बॉडीमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफ. कैसा भी कोई बच्चा खराब आ गया लेकिन बाबा ने उस बच्चे की खराबी का वर्णन कभी किया ही नहीं. ये तो मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा बहुत आगे जाने वाला है. हमारी जो मुरली शुरू होती है उसका सबसे पहला शब्द है मीठे मीठे बच्चे. हालांकि बच्चे कड़वे हैं. बच्चे कैसे हैं? चलो कुछ मीठे भी होंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या हैं? कड़वे हैं. लेकिन बाबा क्या बोलते हैं? बाबा क्या बोलते हैं? अब आप बताइए बाबा झूठ बोलते हैं? यू थिंक? बताइए फिर बाबा मीठे बच्चे क्यों कह रहे हैं? बताइए मीठा क्यों कह रहे हैं? हम तो मीठे नहीं है अभी. चलो मीठे भी हैं लेकिन कई बार कड़वे भी बन जाते हैं.
फिर बाबा ने मीठा मीठा क्यों बोला, 80 वर्षों से मीठा ही बोल रहे हैं, कभी बाबा ने कड़वे बच्चे किसी को बोला ही नहीं। वाई मिसेस शर्मा बताइए, कभी तो मीठे हो जाए। सीज राइट, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों? क्योंकि बाबा मेरा वर्तमान का स्वरूप नहीं देख रहे हैं, वो तो जान ही जाननहार है ना। बाबा त्रिकालदर्शी हैं, वो मेरा भविष्य का संपूर्ण स्वरूप देख रहे हैं। आज बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन कल मेरे बच्चे ऐसे बनने वाले हैं। ये है लाइफ मैनेजमेंट, ये है पेन को हम कैसे गेन में। आज बच्चा ऐसा है कोई बात नहीं, लेकिन कल ये मेरा बच्चा अच्छा होने ही वाला है, आप सोच लीजिए। ओके, और अगली बात है, नेक्स्ट पॉइंट है, कई लोग कहते हैं हालात नहीं बदलते। हालात पर हमारा जोर नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर हालात नहीं बदलते तो ख्यालात को बदलिए, ख्यालात तो मेरे अपने हैं। कई बारी मैं टेंशन को रिमूव करने का जो फॉर्मूला बताता हूं, टेंशन इज इक्वल टू प्रेशर अब्लिक रेजिलियंस पावर। तनाव बराबर क्या है, परिस्थिति बटा मनोस्थिति। तो अगर आपको टेंशन को कम करना है, तनाव को कम करना है, तो दो चॉइसेस आपके सामने हैं। चॉइस नंबर वन है कि आप परिस्थिति के मान को कम कर दीजिए, वैल्यू को कम करिए। इज इट पॉसिबल, परिस्थिति को कम करना पॉसिबल है भाई साहब? नहीं है, कोई बात नहीं छोड़िए। लेकिन मेरे सामने एक और चॉइस है कि अगर मैं अपनी मन स्थिति की वैल्यू को बढ़ा दूं, फिर टेंशन क्या होगी, टेंशन क्या होगी? तो अब आप बताइए, परिस्थिति को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि परिस्थिति माना ही परिस्थिति माना दूसरे के द्वारा पैदा की हुई स्थिति, उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। ओके, लेकिन मन स्थिति माना मेरा मन, मेरा मन। ओके, तो आज से मुझे क्या करना है, हालात पर मेरा कंट्रोल नहीं है, लीव इट। बाहर गर्मी है, मैं गर्मी न आए ये चॉइस नहीं है, लेकिन मैं अपना एसी ऑन कर दूं ये मेरे सामने चॉइस है। यू डू इट, यहां पर एक एसी लगा लीजिए। इसलिए हमारी दादी जी कई बारी बताती हैं, वो कहती हैं मैं आप सबको 3 फैक्ट्रियों की मालिक बनाती हूं। आप बनना चाहेंगे सभी, ब्रजेश बहन बनना चाहेंगी, सभी बनेंगे 3 फैक्ट्रियों के मालिक? सभी तैयार हैं? देखो पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं, बहुत दूर बैठ गए हैं। ओके, तो दादी जी कहती हैं अपने जो हेड है वहां पर लगाइए आइस फैक्ट्री, क्योंकि यहां बहुत गर्म हो जाता है। पेन कब होती है, पेन कब होती है? व्हेन यू आर हॉट हेयर, डोंट टॉक टू मी, माय मूड इज नॉट ओके टुडे। व्हाट्स रॉन्ग विद योर मूड, मूड शुड बी ओके। और बायोलॉजिकली भगवान ने हमें कैसा बनाया, माय हेड शुड बी कूल एंड माय हार्ट शुड बी वार्म। लेकिन मैंने कर क्या लिया है राव साहब, आई नो योर नेम, एटलीस्ट आई कैन आस्क यू क्वेश्चन। गॉड ने जब हमें बनाया तो आइडियल पोजिशनिंग क्या थी, बायोलॉजिकली माई हेड शुड बी कूल एंड माई हार्ट शुड बी वार्म, बट टूडे वट इज हैपेंड इज अदर वे राउंड, माई हेड इज ऑलवेज हॉट, ऑलवेज हॉट। तो हॉट क्यों है, क्योंकि यहां बहुत हैवी ट्रैफिक ऑफ थॉट्स, सारे दिन सारी रात 50,000 थॉट्स वी क्रिएट इन ए डे, कैन यू इमेजिन कितना हैवी ट्रैफिक चल रहा है। ओके, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज्ड, आई एम ऑलवेज इन ए केओटिक कंडीशन, डिलेमा, मैं करूं या न करूं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, उस बहुत सुंदर हॉल में अगर 100 चेयर्स और डलवा दी जाएं तो फिर क्या होगा बताइए? तो आज मेरे दिमाग में भी क्या हो रहा है, ऑलवेज हॉट, ऑलवेज हॉट, इसीलिए मुझे पेन हो रही है। और मैं फिर ब्लेम करता हूं बिकॉज ऑफ माई बॉस, मैं कोर्स कराने जाता हूं, भाई साहब आप हमारे बॉस का ट्रांसफर करा दें, हमारी टेंशन भी ट्रांसफर हो जाएगी, हमारी पेन भी ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, चलो बॉस नंबर 1 का ट्रांसफर हो गया, अब बॉस नंबर 1-2 जो है वो उससे खराब आ गए, व्हाट डू यू डू नाउ, आप क्या करेंगे? इसलिए बॉस को ट्रांसफर करना मेरी समस्या का समाधान नहीं है, फिर मुझे क्या करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, अपने नजरिए को बदलना है, अपने ख्यालात को बदलना है। तो फिर हर जो चीज बाहर से देखने में पेन लग रही है, दैट इज इन टोटलिटी गेन फॉर यू। तो सिर में कौन सी फैक्ट्री लगाई आपने? सभी सभी मालिक बन गए इस फैक्ट्री, हाथ उठाइए प्लीज सभी। वेरी गुड वेरी गुड। तो आज से क्या करना है, सामने वाला कितना भी क्रोध करता रहे लेकिन मुझे क्रोध नहीं करना है। संत न छोड़े संतई, चाहे कोटक मिले असंत। एक बारी महात्मा जी स्नान कर रहे थे नदी में, तो देखा कि वहां एक बिच्छू आ गया, तो बिच्छू डूब रहा है। महात्मा जी ने ऐसे हाथ पर लेके उसको बाहर निकालने की कोशिश की, बिच्छू ने डंक मार दिया, वो गिर गया। फिर दोबारा से महात्मा जी दौड़े, फिर उसको बचाने का प्रयत्न किया, फिर से डंक मार दिया। तो इस घटना को कोई व्यक्ति देख रहा था, कहा महात्मन आप इस बिच्छू की बार बार रक्षा कर रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा है। तो महात्मन मुस्कुराए, उन्होंने कहा देखो ये अपना काम नहीं छोड़ रहा है ना, इसका काम क्या है? तो जब ये अपना कार्य नहीं छोड़ रहा और मैं कौन हूं, मैं संत हूं, तो संत का कार्य क्या है? बस आप अपना काम नहीं छोड़िए। हमारी एक ही शिकायत, एक ही प्रॉब्लम कि मैं क्रोध नहीं करता, मैं पेन नहीं लेता, सामने वाले मुझे दे देते हैं। इज इट ट्रू? ये सत्य है? बताइए सत्य है? ये तो सत्य नहीं है। जब तक आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आपको कोई भी व्यक्ति कोई चीज नहीं दे सकता है। ओके? और मुख में कौन सी फैक्ट्री रखेंगे? शुगर फैक्ट्री। ओके ओके, पक्का कि नहीं? सभी डॉक्टर शुगर खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीठा बोलिए। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का स्लोगन क्या है? कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, बात बन गई। फिर कोई भी चीज आपके लिए पेनफुल हो ही नहीं सकती है। पेन आती तब है, प्रॉब्लम्स तभी आती है जब आप तेजी से बोलते हैं, आप कड़वा बोलते हैं। ओके? तो कम बोलिए। द लेस यू टॉक द मोर यू आर लिसन टू। ओके ओके, कहते हैं शांत होना ही संत होना है। ओके? किसी व्यक्ति का वाणी प्रथम परिचय होती है। कम बोलिए, धीरे बोलिए, क्योंकि बहुत एनर्जी लॉस होता है जब आप बोलते हैं। और मीठा बोलिए। आप देखिए आपकी जुबान में कोई हड्डी नहीं है, लेकिन आप ऐसी बातें बोलते हैं हड्डियां तोड़वा देते हैं। ओके? फितरत को नहीं पसंद सख्ती जुबान में, फितरत को नहीं पसंद सख्ती जुबान में, पैदा नहीं की इसलिए हड्डी जुबान में। ओके? परमात्मा ने हमारी जुबान में कोई हड्डी नहीं लगाई, वो हमें सिखाना चाहते हैं कि हम क्या करें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें। और तीसरी फैक्ट्री कौन सी है? अपने दिल में लव, 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 प्रेम। कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा और पंडित भया न कोई, लेकिन जो ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। आज हम इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े इंजीनियर, इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े डायरेक्टर जनरल, लेकिन क्या प्रेम की भाषा को मैंने समझा? बताइए समझा, समझा? आप बोलते नहीं है, समझा कि नहीं है? एक बार एक इंजीनियर और एक साइंटिस्ट और एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट, वो तीनों नाव में जा रहे थे। तो नाव चलने लगी तो इंजीनियर ने पूछा नाव चलाने वाले से, भैया तुमने इंजीनियरिंग पढ़ी? कह जी सॉरी। कहते तुम्हारी 25% लाइफ चली गई। फिर दूसरे वाला साइंटिस्ट ने कहा तुमने साइंस पढ़ी? कह जी मैं तो नाम पहली बार सुन रहा हूं। कहा तुम्हारी 50% लाइफ चली गई। फिर तीसरे वाला आया, कहा तुमने ये पढ़ी फिजिक्स कहें क्या केमिस्ट्री कहें? कहा जी मैं तो कुछ नहीं पढ़ा लिखा, आपको पता है मैं तो गांव का रहने वाला हूं। कहा तुम्हारी 75% लाइफ इज गॉन। इतनी देर में नाव जो है वो नदी के बीच में चली गई और वो भंवर में फंस गई, गिरो भंवर, और उसमें पानी आने लगा। तो मल्लाह मुस्कराया, उसने पूछा आपने तैरना सीखा? तीनों ने कहा नहीं। कहा तुम्हारी सारी लाइफ गई। ओके ओके ओके। तो आज हमने भौतिक शास्त्र पढ़ा, रसायन शास्त्र पढ़ा, लेकिन व्यवहार शास्त्र नहीं पढ़ा। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आपको किस लिए बुलाया गया है? आप व्यवहार शास्त्र पढ़िए, मीठा बोलिए, सबके साथ सद व्यवहार करिए। ऐसा नहीं है कि सद व्यवहार आपके अंदर नहीं है, आप अपने बॉस के सामने कैसे बोलते हैं? भाई साहब,
सर सर सर।
और घर में पत्नी के सामने कैसे बोलते हैं?
देखिए,
इसका अर्थ है कि आपके अंदर मीठा बोलने की कला है, लेकिन आपने उसको कंडीशन किया हुआ है, तभी पेन हो रही है। तो घर में जो काम करने वाली पत्नी है वो भी एक इंसान है, जो काम करने वाली आया है वो भी एक इंसान है। कल नाटक देखा ना, कितना अच्छा जवाब दिया, कहा चाय मेरे ऊपर नहीं गई, इंटरव्यू मुझे देना है, मेरे कोर्ट को इंटरव्यू नहीं देना है। सारे घर में तूफान, बच्चे की पिटाई लगा दी, पत्नी को भी डांट दिया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, कितनी सारी पेन, रातों रात आपको नींद नहीं आती है। तो आपने अच्छा काम किया, चलो एक छोटा ग्लास टूट भी गया, एक प्याला टूट भी गया, लेकिन जिंदगी तो बहुत बड़ी है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारी जिंदगी में आती रहती हैं। हर पेनफुल घटना को हम यूजफुल, हम गेनफुल बना सकते हैं। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं संत तुकाराम जी का, उनकी पत्नी बहुत लड़ाई करने वाली, हर दिन लड़ाई करती थी, सवेरे उठते ही लड़ाई करना शुरू कर देती थी, और वो भगवान का बहुत शुक्रिया करते थे, भगवान का बहुत धन्यवाद करते थे। तो एक बारी किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, तुकाराम जी आप भगवान का इतना शुक्रिया करते हो, पत्नी आपसे इतनी लड़ाई करती है? कहा यही तो मेरे जीवन का, मेरी तपस्या का रहस्य है, जब जब पत्नी मुझसे लड़ाई करती है तब तब मुझे पिता परमात्मा की याद आती है, सो आई एम थैंकफुल टू हर। सी, तो हर जो दुखकारी घटना है आप उसको सुखकारी बना सकते हैं, हर पीड़ा से आप प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, और अगली बात है अंदर की ओर चले जाएं। प्रॉब्लम कहां आती है, पीड़ा कब होती है? बाहर देखते हैं, बाहर तो समाधान नहीं है। एक महात्मा जी अपने शिष्य को लेसन दे रहे थे, तो बहुत तेज तूफान आ गया, और तूफान आया तो वृक्ष गिरने लगे, धरती हिलने लगी, तो शिष्य को डर लगा, वो भाग गया। एक घंटा हुआ, दो घंटा हुआ, जब तूफान शांत हो गया तो शिष्य ने देखा, गुरुजी का पता करो वो ठीक ठाक है कि नहीं है। तो वो गया, गुरुजी अपने ध्यान में मग्न है। तो शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, गुरुजी आप नहीं भागे? तो गुरुजी मुस्कुराए, उन्होंने बहुत शांत स्वभाव से उत्तर दिया, शिष्य हम दोनों ही भागे, आप बाहर भागे और मैं अंदर भागा। तो आज हमारी जिंदगी में पेन क्यों है? क्योंकि मैं बाहर भाग रहा हूं, बाहर से मेरा कोई सम्मान करे, बाहर से मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरा कोई साथ दे, लेकिन वो साथ देने वाला तैयार है? अगर बाहर वाले लोगों से साथ मांगेंगे तो क्या कहना पड़ता है? कहते अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया? मैंने कहा आपने यार किसको बनाया? अरे परमात्मा को अपना यार बनाइए, जो सदैव आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आउट ऑफ द वे तैयार है। इसलिए दादी जानकी कहती हैं, मैं परमात्मा की राइट हैंड हूं, मैं परमात्मा की लाइट हैंड हूं, और मैं परमात्मा की माइट हैंड हूं। बात बन गई, कुछ करना ही नहीं, राइट हैंड बन जाइए, परमात्मा को अपना सहयोगी बना लीजिए। मैं दिल्ली मेट्रो की विजिटिंग फैकल्टी हूं, कितने बारी वहां प्रोग्राम करने गया, डॉक्टर श्रीधरन जिनको हम मेट्रो मैन कहते हैं, जो रिटायर हो गए हैं, मैंने कितने बारी पूछा, श्रीधरन साहब हाउ कम यू आर एबल टू डू सो मच एट द एज ऑफ 80, 80 साल के हो गए थे। तो कहते हैं पीयूष भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, आई डोंट डू एनीथिंग, ही मेक्स मी टू डू, आई एम ओनली ए मीडियम, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट। तो फायदा क्या हुआ कि आपका एनर्जी लेवल मॉर्निंग में, इवनिंग में, दिन में हर टाइम इंटैक्ट है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। आप किसकी एनर्जी को यूज कर रहे हैं? आप परमात्मा की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो आज से हमें क्या करना है? मैं कर रहा हूं नहीं, हमारी दादी जी कभी कभी हंसी हंसी में कहा करती थी, कहती हैं जब जब मैं कहती हूं कि मैं ये कार्य कर रही हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी की हेड हूं, तो हेडेक होना शुरू हो जाती है। मैं हेड नहीं हूं, हेड तो वो है, उसने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया, मुझे विनम्रता, विनम्र होकर चलना है। और एक दूसरी दादी जी का तो स्लोगन ही ये था, जो भी नहीं रही महान विभूतियां, कहती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हैं किस लिए, कहते हैं मर मर मर, आपको मरना पड़ेगा, सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे, मर मर मर, और कहते हैं सीख सीख सीख, आपको सीखना पड़ेगा, सीखते जाइए, जिंदगी बहुत छोटी है, अपना अनुभव करेंगे तो जिंदगी निकल जाएगी, कुछ सीख नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखिए, मर मर मर, सीख सीख सीख, और तीसरा तीसरा क्या है, झुक झुक झुक, कहते मैं ही झुकूं तब तो पेन हो रही है, लेकिन कौन झुकता है, कौन झुकता है, कहते हैं अकड़ता वही है, झुकता वही है जिसमें जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो अगर मैं अकड़ रहा हूं तो मैं कौन हूं, आप झुक जाइए, आप विनम्र हो जाइए, आप शांत हो जाइए, क्योंकि उस टाइम पर आप एक भी शब्द बोलेंगे तो सामने वाला तो पहले ही गर्मी में है, फिर विस्फोट हो जाएगा, एक शब्द आपका क्या से क्या कर सकता है, इतिहास गवाह है, पेन ही पेन, कहते हैं लम्हों ने खता की, लम्हे समझते, एक क्षण, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा भुगती, देखिए, तो मुझे क्या करना है, एक एक बोल, और बोल से पहले मेरा सोच, सोचने से पहले भी मुझे सोचना है कि आखिर मुझे क्या सोचना है, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सोच में कई बारी हम लोग दुख ले लेते हैं, नहीं अच्छा सोचिए, ओके, आप सब एक्सरसाइज करते हैं, करते हैं कि नहीं, आप बोलते नहीं कुछ, मौन है, यू डू इट एवरी डे, आप बोलते नहीं है कुछ, कम बोलना सीख लिया है, लेकिन मैं जब पूछूंगा तब तो बोलिए प्लीज, ओके, एक एक्सरसाइज आपको उसमें और ऐड करनी है, आज से डेली करनी है, ओके, सवेरे उठने के तुरंत बाद, शाम को सोने से ठीक पहले, अपना हाथ सभी ऐसे करेंगे, सभी करिए, वेरी गुड, ओके, और इसको ऐसे मोड़ेंगे जैसे मैंने बोला ना, और पीछे ले जाइए और बोलिए शाबाश, आवाज नहीं आई, शाबाश शाबाश, दूसरी बात बोलेंगे, हाथ को ऐसे ही रखिए, एक्सरसाइज चल रही है, आई एम ओके, आई एम ओके, तीसरी बात बोलेंगे आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, और चौथी और सबसे जरूरी बात सब मिलकर के बोलेंगे वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, थैंक यू। ये आपको कभी भी पेन न तो आपके शोल्डर में पेन होगी, ना आपके दिल में पेन होगी, ना आपके दिमाग में पेन होगी, बस गेन ही गेन होगा, शाबाश, ओके, क्योंकि बॉस तो कभी शाबाशी और कभी कभी क्या देते हैं, कभी कुछ और भी बोल देते हैं, डांट भी दे देते हैं कभी, आप शाबाशी दीजिए, ओके, सवेरे उठ के कभी अखबार नहीं पढ़ना, नो न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, क्योंकि न्यूज़पेपर माने क्या, सारी निगेटिव खबरें हैं, ओके, और टीवी भी नहीं देखना, क्योंकि टीवी में भी क्या है, वहां भी आस्था तो देख सकते हैं, पीस ऑफ माइंड भी देखिए, लेकिन सवेरे अपने आप से शुरुआत करिए, परमात्मा से शुरुआत करिए, ओके, तो सवेरे सवेरे क्या करना है, शाबाश, माने पेन जो है वो गेन में बदल, गेन ही गेन है, इसलिए भारत में आज तक भी कहावत है कि सवेरे सवेरे किसी अच्छे इंसान का मुख देखो तो सारा दिन कैसा निकलेगा, तो आज से किसका मुख देखेंगे, कल से परमात्मा का, किसका मुख, परमात्मा का, और बहुत प्यार से बोलेंगे गुड मॉर्निंग डैडी, बोलिए सभी गुड मॉर्निंग डैडी, बिकॉज ही इज माई डैडी, ही इज माई डैडी, जो शरीर के पिता हैं वो तो एक जन्म के हैं, और परमात्मा तो जन्म जन्मांतर का पिता है, पिताओं का भी पिता है, टीचर्स का भी टीचर है, और वो गुरुओं का भी गुरु है, इसलिए उसके लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, आप करके देखिए, ओके, और दूसरी बात कौन सी बोलेंगे, आई एम ओके, तो पेन क्यों आई, आई एम नॉट ओके, कौन कहता है आप ओके नहीं है, आप तो ओके हैं, आप तो ओके, आप तो ठीक हैं, मोर देन 90% डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, मन से आ गई, मन में सोच लिया बीमारी है तो बीमारी आ गई, और मन को कन्विंस कर लिया नो बीमारी तो फिर नो बीमारी। जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं आई कैन ओनली ट्रीट एंड ही क्योर्स। जब सारी दुनिया की दवाइयां फेल हो जाती हैं तो फिर दुआएं काम करती हैं। हंसी की बात सुनाता हूं। एक बारी एक सिनेमा हॉल में पति पत्नी दोनों मूवी देखने गए। पति बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट और पत्नी हृदय की रोगी। ओके तो हुआ क्या, जब सिनेमा चल रहा था तो पत्नी को थोड़ा सा यहां पीड़ा हुई। आज पीड़ा की बात हो रही है ना, तो देखना पीड़ा कैसे प्राप्ति में बदली होने वाली है। तो पत्नी ने कहा सुनिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आपके पास कोई दवाई है? कहा है ना मेरे पास दवाई, ये टेबलेट ये गोली अपनी जीभ के नीचे रख लो। 15 मिनट हुए 20 मिनट हुए डॉक्टर साहब ने कहा आप कैसे फील कर रही हो? कहा मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए, कहा मेरी कोट का बटन जो आपकी जीभ के नीचे रखा है ना उसको मुझे वापस दे दीजिए। ओके तो कहने का भाव क्या है, फेथ, आई एम ओके मीन्स यू आर ओके। कोई भी बीमारी आपको नहीं है, डिजीज क्यों आई, डिसईज, आप यहां इजी नहीं है, आप यहां इजी नहीं है। इसलिए आज से क्या करना है, चाहे हालात कैसे भी हों, कहते हैं बहारों से गुजरा हूं और गुजरा हूं पस्ती से, लेकिन जहां से भी गुजरा हूं मस्ती से। बस बात बन गई, कुछ भी नहीं करना है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि सदैव दिन नहीं रहा और सदैव रात्रि भी नहीं रही। बस मुझे कंडीशन कर लेना है अपने माइंड को कि मेरे लिए हर जो देखने में बाहर से पेन जैसी घटना लग रही है वो गेन है, इट्स गेन, प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो फिर क्या होगा, सब कुछ ठीक है, शाबाश, आई एम ओके। फिर थर्ड थिंग कौन सी है, आई एम यूनिक। आज पेन क्यों है, कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, करेक्शन कर रहा हूं, नो, इन तीनों चीज को अपनी जिंदगी से आज ही निकाल दीजिए, तीनों चीज को अपनी जिंदगी से आज ही निकाल दीजिए। ओके, कंपैरिजन भी नहीं करना है और करेक्शन भी नहीं करना है, और तीसरा सी कौन सा है, कौन सा है तीसरा सी, नो कंपैरिजन, नो करेक्शन और नो जी क्रिटिसाइज भी नहीं करना है। ओके, क्योंकि इनके कारण मेरी जिंदगी में बहुत पेन आ रही है। आप हैं ही यूनिक, आप तो सबसे निराले हैं ना, आप जैसा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ओके, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। और अंतिम बात कौन सी है, अंतिम बात कौन सी है, मैं वाह मेरा भाग्य वाह, परमात्मा का कितना थैंक्स करूं, सवेरे सवेरे उठ के कितना थैंक्स करूं, तो सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा और हर जो पेनफुल घटना है वो आपके लिए गेन, प्राप्ति, प्राप्तियों में बदल जाएगी। ओके, तो अभी हमारा समय पूरा हो रहा है, तो इन छोटी छोटी बातों को याद करके जाना, इन बातों को बार बार घर में जाके रिपीट करना, ट्रेन में भी रिपीट करना, सवेरे सवेरे उठ के ये चारों ही एक्सरसाइज 5-5 बारी करना, और रात को सोने से पहले भी करना। ओके, और अभी थोड़ी देर के लिए हम मेडिटेशन करेंगे ताकि जो बातें हमने सुनी हैं उनको हम अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। आप सभी सीधे होके बैठ जाएंगे, बिल्कुल सीधी कमर हमारी, बिल्कुल सीधी और शरीर बिल्कुल ढीला। कुछ भी चीज हाथ में पकड़ी हुई है तो उसको साइड में रख देंगे, सिट फ्रीली। और इस समय पर किसी का भी मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए, प्लीज पुट योर मोबाइल्स इन पावर ऑफ मोड्स। ओके, नेत्र खुले हुए और जो बातें मैं बोलूंगा उनको बहुत ध्यान से सुनते हुए, उनको मेरे साथ दोहराएंगे नहीं, बट ट्राई टू फील दोज वर्ड्स। ओके, चलिए चलिए प्लीज। ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपने चिंतन की धारा को बदलिए, अपने संकल्पों को बाहरी जगत से समेट लीजिए और अंतर्मुखी एकाग्रचित होकर अंतर जगत की यात्रा पर चलिए। यह शरीर मेरा वस्त्र है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। यह देह मेरी गाड़ी है, मैं आत्मा इसके चालक हूं। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं। मेरा शरीर हार्डवेयर के समान है और मैं आत्मा इसकी सॉफ्टवेयर हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित हूं। अब अपना ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच, अपने दोनों नेत्रों के मध्य भ्रकुटी में केंद्रित करिए। वस्तुतः इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में भ्रकुटी ही है। सो आई एम ए सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, माइट एंड एनर्जी। I am a shining soul. I am a peaceful soul. Pure soul. Positive soul. Powerful soul. Spreading positive vibrations all around me. The surroundings have become soothing. The atmosphere has become pleasant. And I'm enjoying these moments. And I feel much, much relaxed. Meditation, if I do daily in the morning for some time, this can recharge the battery of my soul. Meditation increases my willpower, concentration power, decisioning power, and with all these powers I learn to work at will. I become my own guide.
teacher and mentor. So, meditation is art of living. Meditation is way of living. Meditation makes my life balanced and beautiful. Meditation teaches me how I can transform pain into gain. So, let me meditate daily. This is need of the hour, call of the time. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. 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 Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष भाई जी का, जोरदार तालियों से आपका आभार प्रकट करते हैं।